ओम शांति। एक सन्यासी बहुत लंबी यात्रा कर किसी गांव में आता है। प्यास उसे लगी थी। एक पनघट पर जाता है जहां पर कुआ है। उस कुएं का पानी पीता है। थका मांदा है। एक पत्थर लेता है सिरहाने और उसी कुएं के पास सो जाता है। धीरे धीरे वहां पर पानी भरने के लिए गांव की स्त्रियां पनिहारिन आने लगती है। वो जब स्त्रियां उस सन्यासी को देखती है, उसमें से एक स्त्री कहती है, सन्यास ले लिया, संसार छोड़ दिया, पर तकिए का मोह अब तक नहीं गया। क्या कहती है कि संसार का त्याग कर दिया, सन्यास ले लिया, पर तकिए का मोह अब तक नहीं गया। सन्यासी ये बात सुन लेता है, उड़ जाता है और वो जो पत्थर है तकिया के लिए लिया था फेंक देता है। दूसरी स्त्री कहती है, सन्यास ले लिया पर अकड़ अब तक नहीं गई। इतनी अकड़, उठकर खड़ा हो जाता है। तीसरी स्त्री आती है, वो कहती है, हम तो अपना काम करने आई है, पानी भरने और पानी ले जाने, तुम क्यों हमारी बातों से प्रभावित हो रहे हो। और चौथी स्त्री उसको कहती है कि हम पनिहारिन यहां आएंगी, पानी भरेंगी, पानी भरकर जाएंगी और कुछ ना कुछ तो कहेंगी, तुम मगन होकर हरि के गुण गाते रहो, बस इस पर ध्यान ना दो कि हमने क्या कहा, क्योंकि अगर तुम कुछ भी ना करो तो भी हम तो कुछ ना कुछ कहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि हमें कोई कुछ ना कहे। जब ज्ञान में चल रहे हैं तो लोग कहते हैं ज्ञान छोड़ दो, और जिन्होंने वास्तव में छोड़ दिया उनको लोग कहते हैं छोड़ा क्यों। भक्ति में कहानी दिखाते बड़ी रमणीक। शंकर जी और पार्वती जी जा रहे हैं नंदी बैल के साथ, दोनों पैदल। लोग कहते हैं कैसे मूर्ख दाम्पत्य है, इतना बड़ा बैल है और पैदल जा रहे हैं, इन जैसे मूर्ख तो कोई दूसरे लोग नहीं होंगे। शंकर जी सोचते हैं बात तो सही है, दोनों बैठ जाते हैं बैल के ऊपर। आगे लोग कहते हैं अरे रे रे, जानवर कुछ कहता नहीं, मतलब कितने भी अत्याचार करोगे उनके ऊपर, मूक प्राणी है, कुछ तो सोचो। वो कहते हैं अरे ये तो सही है। तो शंकर जी कहते हैं पार्वती को कि मैं बैठता हूं, तुम चलो पैदल। आगे लोग मिलते हैं, कहते अरे 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 अरे, कैसा पति है, पति को पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, इसको जरा भी परवाह नहीं, खुद बैठा है और पत्नी को चलाता है। शंकर जी कहते ये बात भी सही है, पार्वती को जो बैठाता है और खुद चलने लगता है। लोग कहते अरे अरे अरे, पति परमेश्वर है, खुद आराम से बैठी है और पत्नी को चलाती है, यही पत्नी धर्म है। फिर वो दोनों सोचते अब क्या करें। तो शंकर जी उस बैल के दो पैर पकड़ते हैं और पार्वती दो पैर, और उठा के ले जाते दोनों। लोग कहते हैं ऐसे मूर्ख तो आज तक नहीं देखे, चाहे तुम बैल पर बैठो ना बैठो, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। कोई माता जी ज्ञान में चलती थी एकदम पक्की, उसने अपने बेटे को ज्ञान में लाया, उसी ने लाया बेटे को ज्ञान में, और बेटा भी इतना कुमार पक्का हो गया कि उसने बोल दिया आज के बाद मैं शादी नहीं करूंगा, बस कुमार जीवन। परंतु माता जी जो ज्ञान में चलती थी उसको तो बहू चाहिए थी, कैसे भी करके बहू तो चाहिए, जबरदस्ती की उसको, वो तो मानने को तैयार नहीं था। क्योंकि माता जी ने ही लाया था ज्ञान में, तो जबरदस्ती शादी कर ली। और शादी के बाद बहू आई एकदम खतरनाक, जो रोज झगड़े, तेज तर्राक, एकदम तेज, रोज घर में झगड़े, रोज घर में झगड़े। बेटे ने कहा, देखा तुमने ही बोला था ना शादी कर शादी कर। मां ने कहा, बोला तो मैंने था पर की तो तुमने ना। चाहे संसार जो कहे कहने दो, हमें वही करना है जो भगवान कहता है बस। और भगवान हमें मर्यादाएं सिखाता है और नियम सिखाता है और श्रीमत सिखाता है और फरमान बताता है और ऑर्डर्स बताता है और ऑर्डिनेंस निकालता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में ऐसी कुछ मर्यादाएं हैं जो सभी जानते तो है, पर मर्यादाओं को केवल जानने से कुछ नहीं होता है। लिखी हुई भी है पर लिखने से कुछ नहीं होता है। फॉलो कर भी रहे परंतु कितना कर रहे, यथाशक्ति नंबर वार। इसलिए बार बार रिवीजन की आवश्यकता है। तो ऐसी हम 26 मर्यादाओं की चर्चा करेंगे ब्राह्मण जीवन की। सबसे पहली मर्यादा अमृत वेला, जो कि कईयों ने मिस कर रखा है एक महीने से। मर्यादा एक कवच है, किला है, सुरक्षित रहेंगे। मर्यादाओं को तोड़ो और माया के अधीन, माया मार डालती है। आज सुबह की मुरली, सबसे पहला नियम है सुबह उठना। और सुबह उठना अमृत वेला अच्छा करने की विधि, जल्दी उठना नहीं है, जल्दी सोना है। जो जल्दी सोएगा अपने आप जल्दी उठेगा। इसके लिए पुरुषार्थ को थोड़ा बदल दो। अब तक पुरुषार्थ है जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। जल्दी उठने का पुरुषार्थ नहीं करना है, जल्दी उठना परिणाम है, रिजल्ट किसका, जल्दी सोने का। कितने बजे तक सो जाना चाहिए? 10 बजे तक। परंतु डिजिटल नगरी के अनजान रास्ते इसी समय खींचते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया। अगर अमृत वेले का रस चाहिए, अगर उस दुनिया का रस चाहिए, तो इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो नीचे चमकता हुआ दिखाई दे रहा है वो झूठा है, सच्चा हार ऊपर है, इसके लिए छोड़ना पड़ेगा। छोटी छोटी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके लिए अमृत वेला अच्छा करने की विधि है जल्दी सोना। उठते ही स्वान का अभ्यास, और जितना हो सके स्नान करके अगर किया जाए तो बहुत अच्छा। कईयों को नींद आती है, अगर ज्यादा ही नींद आती है तो चलते फिरते छत पर जाकर, फिर भी नींद आती है तो अव्यक्त बाहबा के ऑडियो सीडी कैसेट वीडियो कुछ भी देखो। अगर फिर भी नींद आती है तो कुछ पढ़ो पहले 10 मिनट, फिर अमृत वेला की शुरुआत करो। सब कुछ अवेलेबल है मोबाइल पर। आज की मुरली पढ़ लो 10 मिनट, फिर अमृत वेला चालू करो। अगर बहुत भयंकर नींद आती है, बहुत नींद। कुछ दिन पहले मधुबन में एक बड़ा अच्छा दृश्य, हम मेडिटेशन हॉल में अमृत वेला करने बैठे थे तो 2 कुमार थे सामने बैठे थे, तो एक कुमार को नींद आने लगी एकदम भयंकर, कभी इधर गिर रहा है कभी उधर। तो दूसरे ने उसको एकदम डांटा, एक ठीक से बैठ। और फिर उसको जागृत आया, फिर वो ठीक से बैठने लगा। थोड़े देर के बाद जिसने बोला था उसको नींद आने लगी। अब इसकी बारी थी बदला लेने की, मुझे बताया मैं तुमको ठीक करता हूं। फिर उसने उसको डांटा। तो नींद चालू रहती है, प्रकोप पहला नियम है अमृत वेले को ठीक ठाक करना है। नींद वाला ना हो, आंखें बंद ना हो, डोलना नहीं है अमृत वेला। अभी अभी देखा 4 बज रहे थे, अमृत वेला किया ऐसा लगा 5 ही बज गए, देखा तो 5 ही मिनट थे। 5 ही मिनट मतलब 1 घंटा निकल गया और नींद में पता ही नहीं चला। नींद आ रही है मतलब शायद नींद कम हो रही है, तो नींद को ठीक ठाक करना है। 6 घंटा कम से कम नींद होनी चाहिए 24 घंटे में, ऐसी सेटिंग करनी है, नहीं तो नींद आएगी। अमृत वेला शक्तियों का अनुभव नहीं होगा। नए नए प्रयोग करने अमृत वेला, नए योग के प्रयोग करने, नए समान के प्रयोग करने, नए नए 3 स्वरूप 5 स्वरूपों के अभ्यास करना है, सकाश देनी है, कितने काम करने हैं। अमृत वेला की किताब किस किस ने पढ़ी है? यज्ञ में किताब है अमृत वेला, बस 2-3 लोगों ने। अगर सेंटर पर हो तो वो किताब ले लेनी है, अमृत वेले की छोटी सी किताब है। 1 मास तक बस वो किताब ही पढ़ते रहना, सुबह पढ़ना रात को पढ़ना। उसमें बाबा के सारे महावाक्य है अमृत वेले से संबंधित, अमृत वेले की समस्याएं, अमृत वेला क्या अभ्यास करे, क्या क्या करना चाहिए, क्यों नहीं अच्छा होता, पूरा वर्णन है। तो उस किताब को सुबह पढ़ना, शाम को पढ़ना। ऑनलाइन अवेलेबल है पर इंग्लिश में अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी मोबाइल पर। हिंदी वाली आपको खरीदनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, चाहे मधुबन से, चाहे यहाँ से, या कोई बड़ा सेंटर हो जहाँ मिल जाए, कहीं से भी। ढूंढना इतना आसान नहीं है, भगवान को ढूंढ लिया, किताब ढूंढना क्या मुश्किल है? इसके लिए बहाने मत बताना हमको पता नहीं कहाँ जाना है, कहीं से भी ढूंढो। क्योंकि अगर अमृत वेला ही केवल कुछ ही लोगों ने हाथ उठाया, 1 महीना जिनका अमृत वेला मिस नहीं हुआ, तो कुछ तो करना पड़ेगा, इमरजेंसी है। और जिन्होंने पढ़ी है वो फिर से पढ़े पक्का करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली मर्यादा अमृत वेला, दूसरी मर्यादा ब्रह्मचर्य, दूसरी मर्यादा ब्रह्मचर्य पवित्रता। पवित्रता का आधार है ब्रह्मचर्य। पवित्रता बहुत बड़ा भवन है, उसकी जो नींव है वो है काम जीत बनना। जो काम जीत है वो जगत जीत है। कुछ दिन पहले मुरली आई थी, कर्मेंद्रिया कैसी है तुम्हारी? छीछी और बासी, एक एक कर्मेंद्रियों में विकार भरे पड़े हैं जन्म जन्म के। कर्मेंद्रिया सुगंधित हो जाए, बाबा के महावाक्य है। कुछ दिन पहले मुरली में था, अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे सेंटर पर रहने वाले बच्चों की क्रिमिनलाइज है, क्रिमिनल चक्षु, सिविल चक्षु बनाने। बहुत काम करना पड़ेगा, आंखों के पाप लिस्ट निकालनी है, आंखों से किए हुए विकर्म कौन कौन से, आंखों द्वारा होने वाले पाप क्या क्या है, सबको होमवर्क। इन आंखों को शुद्ध बना देना है। आज सुबह स्पार्क में जो रिट्रीट चालू है 4 दिन की स्पार्क की, उस रिट्रीट का थीम पूरी एक मुरली पर आधारित है। वो मुरली है 25 अगस्त 1971 की, जिसकी आज सुबह हमने वहाँ चर्चा की। ये 4 दिन की जो रिट्रीट ORC में चालू है वो एक मुरली पर आधारित है। उस मुरली का शीर्षक है 7 प्रकार की कमजोरियाँ, और उसमें एक कमजोरी बताई है आंखें, नज़र अलौकिक नहीं है, लौकिकता है उसमें, विकार है। उदाहरण दिया उस मुरली में बाबा ने, मंदिर में देवी की मूर्ति है, लोग जाते हैं और पवित्रता का भाव जागता है, वैसी ही स्त्री, वैसी ही एक फीमेल किताब में है, सिनेमा में है और बोर्ड पर है चित्र बना हुआ, उसको देखते हैं वृत्ति चंचल होती है। मंदिर में देवी को देखते हैं तो वृत्ति चंचल नहीं होती, कारण बताओ, बाबा ने प्रश्न पूछा है, क्या कारण होगा? वो जो सिनेमा में दिखाई जाती है, बाबा ने कहा उधर भी सुंदर है, इधर भी सुंदर है, यहां भी सजावट वहां भी सजावट, पर यहां वृत्ति पवित्र रहती है। सिनेमा की स्त्री, बोर्ड की स्त्री और किताब की स्त्री को देखते हैं तो वृत्ति चंचल होती है, क्यों? उत्तर बाबा ने ही दिया है। जब देवी को, जब मंदिर में मूर्ति देखते हैं तो मन में आता है यह देवी है, स्मृति क्या है, यह देवी है, इसीलिए पवित्रता है। और जब किताब में देखते हो और सिनेमा में देखते हो और बोर्ड में देखते हो तो मन में आता है यह फीमेल है, इसीलिए वृत्ति चंचल होती है। यह भगवान का उत्तर है। कब दिया? 71। कहां दिया? हिस्ट्री हॉल में मुरली चली है, भट्टी की मुरली है यह। इस एक मुरली के आधार पर 4 दिन की रिट्रीट चालू है, ब्रह्मचर्य। अव्यक्त मुरली है 15 नवंबर 2003, 15 नवंबर 2003। चित्र देखा होगा कई सेंटरों पर लगा है बाबा का, यही मुरली, धर्मराज का रूप। थोड़ा सा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत है। अपवित्रता अर्थात सफेद कागज पर काला दाग। ब्रह्मा ने इतनी गालियां क्यों खाई पवित्रता के लिए? कोई भी हो, चाहे सेवाधारी, चाहे सरेंडर, चाहे कुमार, चाहे कुमारिया, चाहे गृहस्थ में रहने वाले, सभी के लिए बाबा दादा ऑफिशियल वार्निंग देते हैं, इस बात को छोटा नहीं समझना। अगर समझते हो तो सुन लो, अब कान खोल के सुनो, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। धर्मराज भी छोड़ेगा नहीं, शरीर सांप है, सांप में विष होता है, इसलिए केवल और केवल मस्तक मणि को देखो, देह को नहीं। दूसरी मर्यादा कौन सी है? पवित्रता, ब्रह्मचर्य। तीसरी मर्यादा है सेवा केंद्र का वायुमंडल। ये मर्यादाओं की लिस्ट जो हम आपको बता रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो सेवा केंद्र के आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सब जो यहां बैठे हैं उनके लिए ये मर्यादा है। तीसरी मर्यादा है सेवा केंद्र का, सेंटर का वायुमंडल। हम यहां आए और यहां का वायुमंडल हमने अगर खराब कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है हमारे ऊपर। यहां आना मतलब यहां के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है। लोग आते हैं, एक भाई हमसे कह रहा था हमारे सेंटर का क्या करें हम, मुरली क्लास पूरी होती है और 3-4 भाई बैठते हैं और पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं, रोज का हो गया है। वायुमंडल को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं या शक्तिशाली बना रहे हैं? दूषित। सेंटर पर आते हैं और बिजनेस की चर्चा करते हैं, सेंटर पर आते हैं और लौकिक चर्चा करते हैं, सेंटर पर आते हैं और अपने घर का सारा कारोबार यहां ले आते हैं। ये स्थान कौन सा है? ये मिनी मधुबन है, भगवान का घर है। इन दीवारों पर पवित्रता है। लक्ष्य रखना है कि सेवा केंद्र का वायुमंडल मुझे शक्तिशाली बनाना है। अगर ना बना सकूं तो कम से कम दूषित तो ना करूं। चौथी मर्यादा ड्रेस, कपड़े। कपड़े कैसे हो? ब्राह्मण आत्मा हो के? वाइट नहीं बताओ, साफ सुथरे और सिंपल और हाँ, ना ऊंचे ना नीचे, और कैसे हो कपड़े? हाँ, ढका हुआ। इस्लाम धर्म में बहुत कड़े नियम हैं। इस्लाम में 5 नियम हैं स्त्रियों के वेशभूषाओं के लिए, वो पुरुषों के लिए भी लागू हो सकते हैं, पर ये खास बहनों के लिए इस्लाम में बताया है। पहला, केवल चेहरा, हाथ और पैर इतना ही खुला हो, बाकी सब ढका हुआ, एक नियम। दूसरा, ढीले हो, टाइट नहीं, इस्लाम में नियम है कपड़े ढीले हो। तीसरा, स्त्री के कपड़े पुरुषों जैसे ना हो, स्त्री के कपड़े पुरुषों जैसे ना हो। जो कि आजकल बहुत ज्यादा है। चौथा, भड़काऊ ना हो। पांचवा, काफिरों जैसे ना हो। काफिर शब्द इस्लाम में आता है कुफ्र करने वाले, अर्थात जो धार्मिक नहीं अधार्मिक व्यवहार करते हैं। ये पांच नियम बताए हैं इस्लाम धर्म में, इसलिए वो लोग क्या पहनते हैं बुरखा। कितने नियम हैं वहां पर, बहुत सारे नियम हैं। इस यज्ञ में भी हमारे कपड़े ढीले हो, टाइट ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, ये भी एक नियम है उन पांच में से एक, ये भी ऐड है। पारदर्शी ना हो, ओपेक हो, ओपेक अर्थात अंदर का न दिखे, ऐसे कपड़े। कपड़े ढके हुए तो पर इतने पतले हैं, पारदर्शी, ये मर्यादा नहीं है। ये पांच नियम उधर है, ऐसे ही कुछ नियम ये इस यज्ञ में भी बाबा ने लागू किए। हमारे कपड़े ऐसे ना हो कि हमारे कपड़ों को देखकर ही हमारे पीछे कोई पागल हो जाए। जितना हो सके लाइट कलर हो, डार्क ना हो बहुत ज्यादा। और जब सेंटर पर आते हैं तब तो ये हमारा ऑफिशियल ड्रेस है, वाइट। बैच हो, वाइट ड्रेस हो। एटलीस्ट सेंटर सुबह क्लास में आते हैं तब हम गॉडली स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स क्या यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस साफ हो, क्लीन हो, फटे नहीं हो। पुराने हो तो चलेंगे, फटे नहीं होने चाहिए, सील दो उसको। ये ड्रेस का नियम है। उसके बाद में अगला नियम है इकोनॉमी। इकोनॉमी अर्थात बचत। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, पेट्रोल, डीजल, पैसा, बचत करनी है हर चीज की। गैस बचत करनी है, ये नियम है। यहां से मधुबन में गए, बहुत सारा भोजन ले लिया, इतनू सा खाया, बाकी सब वेस्ट। चाय ली एक ग्लास भर के, आधा पी और रख दी, और कहां रखी, कहीं पर भी। हम देखते हैं रोज मधुबन में पार्टी आती है इतनी सारी, कितना वेस्ट करते हैं सारे पार्टी वाले भोजन। जब पता है ये मैं खा ही नहीं सकता, मुझे कभी खाया नहीं है, थोड़ा सा लो, ऐसा डर लगता है कहीं खत्म ना हो जाए, सब डालो। अव्यक्त मुरली 18 फरवरी 1988। ये भोजन ब्रह्मा भोजन है, ये दुख भंजक भोजन है, एक एक कणा मोहर की तरह है, वेस्ट नहीं करना है उसको। इकोनॉमी भोजन की, जब पता है हम नहीं खा सकते, थोड़ा सा ही लेना है, वेस्ट नहीं करना है, बोझ चढ़ेगा इधर। यज्ञ में जो पैसा आ रहा है, एक एक पैसा कहां से आ रहा है, कितनी गरीब माताएं हैं जिनके पास कुछ नहीं, एक पैसा रोज डालती है पाठशाला में। गरीबों के पाई पाई से परमात्मा तालाब भरा है और हम वेस्ट कर रहे हैं। इकोनॉमी। अगला नियम है भोजन, फूड। अगला नियम मर्यादा, भोजन की मर्यादा। उसमें तीन चार बातें, सबसे पहला भोजन कहां से आ रहा है, पैसा एक नंबर का है कि दो नंबर का है, किसी का शोषण करके पैसा आ रहा है, एक्सप्लॉइट करके पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा उससे भोजन बन रहा है, वो कभी स्वीकार नहीं होगा, पहला नियम। दूसरा, भोजन में जाति दोष, कंकड़ है, पत्थर है, बाल है, ये सब ना हो। तीसरा दोष भोजन का, भोजन कैसा है, रजो है, सतो है, तमो है। जो भोजन हम खा रहे हैं वो रजोगुनी तो नहीं है, बहुत ज्यादा तीखा है और बहुत ज्यादा चटपटा है और तेल ही तेल है, ये रजोगुनी भोजन है या बासी चीज है, ये तमोगुनी है। वो तो सब छोड़ दिया नॉनवेज और वो सब, पर इसमें सतोगुनी है। भक्ति मार्ग में है अशोक वाटिका, जहां हमको जाना है, और ये संसार है शोक वाटिका और ब्राह्मणों की है छोक वाटिका। हर चीज को क्या करते हैं, छोक लगाते हैं, हर चीज को छोक लगाते हैं, छोक लगा के उसको टेस्टी बनाते हैं। वो है विषय वैतरणी नदी, यह है तेल वैतरणी नदी। भोजन सतोगुनी हो, सम्यक आहार के तीन नियम हैं। पहला नियम, वो भोजन ना हो जो उत्तेजना उत्पन्न करे, एक्साइटमेंट। दूसरा, वो भोजन ना हो जो आलस, प्रमाद और निद्रा उत्पन्न करे। और तीसरा, स्वास्थ्यवर्धक हो। ये तीन नियम हैं। भोजन तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको यहीं छोड़ते हैं, पर ये कुछ बातें याद रखनी है। चार प्रकार के दोष, पहला बताया था कहाँ से पैसा आ रहा है, दूसरा बताया है जाति दोष, भोजन में ही कुछ दोष है, कंकड़ पत्थर, तीसरा टाइप ऑफ फूड रजो सतो, और चौथा बनाने वाले की मन में क्या चल रहा है। भोजन बनाते समय क्या विचार से भोजन बनाया जा रहा है, भगवान को भोग लगाना ये विचार है कि लोग मुझे कहे कि बहुत ही टेस्टी बनाया, किसने बनाया है भोजन, ऐसा कोई जब तक पूछे नहीं तब तक बेचैनी रहती है, हमने बनाया, आहा बहुत अच्छा बनाया, तब कहीं संतुष्टता मिली कि मैंने बनाया। ये चार, हिंदी में रसोई कहते हैं, चौका कहते हैं, चौका में ये चार बातें आएगी। और जब भोजन बन जाए उसके बाद क्या करना है, उसको भोग लगाना। तो कितनी माताएं यहां पर है जो रोज भोग लगाती है, और बाकी ऐसे ही भगवान को भूखा और खुद ही खा लिया। जो भोजन हमारे घर में बनता है 24 घंटे में एक बार भोग जरूर लगाना है सभी माताओं को जो भोजन बनाती है। और भाइयों में से भोजन बनाने वाले कितने हैं, कोई भाई भोजन बनाता है, कोई नहीं, खाली भोग लगाते हैं, चलो वो भी बहुत अच्छा है। तो भोग लगाना, भगवान को हमारा भोग नहीं चाहिए, वो प्रेम का भूखा है, भावना का भूखा, प्रेम का प्यासा, वो हमारा प्रेम है। और वो भी योग का एक प्रयोग है, योग की में टाइम में गिना जाएगा वो, ये अगर भोग लगाया जाता है तो। भोजन, उसके बाद में अगली मर्यादा है शुभ भावना, शुभ कामना, खुशी और दुआएं देना। तीन चीजें देनी है आपस में एक दूसरे को, कौन कौन सी, शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं और खुशी, ये मर्यादा है। अर्थात दुख नहीं देना है किसी को, नहीं तो कड़े हिसाब बनेंगे, जो है उसको चुकतू करना है। उसके बाद में अगली मर्यादा है सत्संग, होली कंपनी। सत्संग अर्थात किसका संग, कितने सत्संग हैं ब्राह्मण जीवन में, एक सत्संग है सत का संग, दूसरा सत्संग है महान आत्माओं का संग। अगर वो है नहीं है, उनकी आवाज तो है, सुनी जा सकती ऑडियोस, वो भी सत्संग है। तो दूसरा सत्संग है महान आत्माओं का संग, तीसरा सत्संग है किताबें, ज्ञान योग की किताबें, उसमें अपने आप को बिजी रखना, पढ़ाई में। ज्ञानामृत मैगजीन आती है, कितने लोग पढ़ते हैं। अब नियम बनाना है, महीने के 10 तारीख के अंदर ज्ञानामृत पढ़ के होनी चाहिए, उस मास की 10 दिन के अंदर सारी पूरी की पूरी, ये नियम बनाना है। उसमें बहुत अनुभव आते हैं लोगों के, अच्छे अच्छे ब्राह्मण आत्माओं के, वो भी सत्संग है। उसके बाद है ऑडियो विजुअल सत्संग, ऑडियो विजुअल सत्संग अर्थात क्लासेस सुनना, रोज एक क्लास जरूर सुननी है। यज्ञ में महान आत्माएं, दादियां, श्रेष्ठ वरिष्ठ भाई बहने हैं उनकी क्लासेस, वो भी सत्संग है। फिर है प्रकृति का सानिध्य, वो भी सत्संग है, एकांत स्थान। यहाँ कहाँ मिलेगा हमें नहीं पता, यहाँ बहुत लग जाते हैं सब, पर कोई गार्डन, कोई टेरेस, कोई छत, वहाँ पे एकांत में प्रकृति का संग करना, वो भी सत्संग है। तो सत्संग मर्यादा है, इसके विरोध में है कुसंग। कुसंग अर्थात व्यर्थ की बातें, यहाँ वहाँ की बातें, झरमोई झगमोई, पर चिंतन पर दर्शन, इसने क्या किया, उसने क्या किया, यहाँ क्या हो रहा है, उसके घर में उसकी ननद, उसकी सास, उसकी बहू, उसकी शादी, इसकी शादी, ये सब कुसंग है। उसके बाद है दिव्य गुणों की धारणा। अगली मर्यादा कौन सी है? दिव्य गुणों की धारणा करना। 36 गुण है, रोज एक गुण लेना या एक हफ्ते के लिए एक गुण लेके गुणों की भट्टी करनी। उसके बाद है मधुबन की यात्रा, जर्नी टू मधुबन। इसमें भी मर्यादाएं हैं, मधुबन जाने के बाद क्या क्या करना, क्या करना चाहिए मधुबन जाने के बाद, क्या क्या करना चाहिए? हाँ, तपस्या और बाहर शॉपिंग कौन करेगा फिर? शॉपिंग तो कितनी सारी है, और घूमने फिरने कौन जाएगा? अंबाजी जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है, आधा समय तो माताओं का शॉपिंग में चला जाता है वहां शांतिवन के बाहर। मधुबन गए किस लिए थे? शॉपिंग करने गए थे या तपस्या करने गए थे? मधुबन के नियम, वहां जाकर वहां क्या गड़बड़ हो रही है, इस पर पीएचडी करना नहीं है। पीएचडी दूसरों पर नहीं करना है, पहले अपना ग्रेजुएशन पूरा करो, बाद में दूसरों पर पीएचडी करना है। मधुबन गए थे तपस्या करने और वहां लग गए यहां वहां की बातें करने में, तुम्हारे सेंटर में क्या हो रहा है, हमारे सेंटर में ऐसा हो रहा है, पर चिंतन पर दर्शन, ग्लानी करना, बड़ों की निंदा करना, ये करने गए थे मधुबन या कुछ और करने गए थे? वहां जाते हैं भाई बहने, 3 दिन यहां वहां की बातें और यहां वहां भटकना, और फिर बाबा से मिलते हैं, और बाबा से मिलते समय भी फोन पर बातें चालू रहती है, और बाबा से मिल लेते हैं, और फिर घूमते फिरते, और फिर सेंटर पर आकर बताते हैं बहुत अच्छा अनुभव हुआ बाबा के साथ का। अनुभव इतना सस्ता है, ऐसे हो जाए किसको भी। मधुबन में जाने के पहले अपनी मानसिक तैयारी करनी है, मैं किस लिए मधुबन जा रही हूं, जा रहा हूं, और 4 दिन मौन ही धारण कर लेना तो बहुत अच्छा है, बात ही नहीं करनी है किससे, बस अपनी तपस्या करो और निकलो और चुपचाप आओ, तो कहीं जाके अनुभव होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जर्नी टू मधुबन। उसके बाद अगला नियम है कीपिंग चार्ट, चार्ट रखना। रात में सोने से पहले चार्ट, कई लोगों को लिखना पसंद नहीं है तो बाबा को सुना देना हो, कम से कम उतना तो किया जाए, मौखिक या लिखित, और बाबा को अपनी सारी दिनचर्या सुना देना, आज ये हुआ, और फिर सोना। इतना भी सुना दिया तो भी मन हल्का रहेगा, नहीं तो भारीपन रहेगा, दूसरे दिन भी वही विचार। महात्मा गांधी ने लिखा है, जब मैं सोता हूं तो मर जाता हूं, और जब उठता हूं तो मेरा नया जन्म होता है दूसरे दिन। आज सो रहा मतलब आज का पूरा खत्म, मर चुका, फुल स्टॉप। दूसरे दिन उठता हूं तो जैसे आई एम रिबॉर्न, नया जन्म होता है, नए दिन की शुरुआत। उसके बाद लव फॉर वन बाबा, एक बाप से प्यार। कई सारे देहधारियों में बुद्धि अगर फंसी है तो बाबा से प्यार नहीं होगा, अमृत वेला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इससे भी मोह, उससे भी मोह, इससे बात करो, उससे बात करो, इसको फोन करो, उसको फोन करो, इसको मैसेज, उसको मैसेज, इसको व्हाट्सएप, उसको व्हाट्सएप, क्यों करना है लंबा लंबा फोन पे बात, आधा आधा घंटा तक, क्या मतलब है, किस लिए बात कर रहे हो? 3 मिनट से ज्यादा किससे बात करने की आवश्यकता नहीं है, 3 मिनट्स, दैट्स इट। हाँ, कोई सेवा समाचार है तो ठीक है, पूरा बताना है, कोई प्रोग्राम आयोजित कर रहे, कोई सेवा की बात है तो ठीक है, बाकी किस लिए? मोह बढ़ेगा बस, और कुछ नहीं, फैमिलियरिटी बढ़ेगी, अननेसेसरी दोस्ती करना फोन पर लोगों से, व्हाट्सएप से, अननेसेसरी ग्रुप्स बना के रखना, और उसमें मैसेजेस, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सद्गुरुवार, हैप्पी नुमा शाम का योग। टाइम वेस्ट है सब, किस लिए भेज रहे हैं? कुछ मतलब है ऐसा भेजने का? कुछ सब वेस्ट। हैप्पी श्राद्ध, हैप्पी श्राद्ध। बिजनेस के मैसेजेस भेज रहे हैं, पॉलिटिकल जोक्स भेज रहे हैं, क्यों? सब वेस्ट। समर्थ संकल्प में आएगा क्या वो? व्यर्थ संकल्प में आएगा सब। तो बाप से प्यार, एक बाप से प्यार। अगला नियम है मुरली चिंतन। मुरली केवल पढ़ना नहीं है, मुरली केवल सुनना नहीं है, क्या करना है? मुरली का रोज के चिंतन करना है, गहराई में जाना है उसकी। ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ये किस लिए कहा? जब तक गहराई नहीं तब तक स्थिरता नहीं। पानी के ऊपर ऊपर, सागर के ऊपर ऊपर आवाज है, हलचल है, नीचे जाओ तो शांत है। मुरली की गहराई में जाना है, उतरना है उसमें क्या है। इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। दादी जान की जब ज्ञान में आई तब बाबा से दादी ने पूछा, बाबा मैं बहुत लेट आई, मैं क्या करूं? दादी को चिंता हुई। किस बात की चिंता? लेट आने की। कब? 1936 के वहां तब। हमको अभी भी चिंता नहीं है कि हम लेट आए। दादी ने बाबा से पूछा, मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, 12 बार मुरली पढ़ो। दादी ने कहा, मैं 24 बार पढ़ू तो जा सकूंगी ना सबसे आगे। हम कितनी बार पढ़ते हैं? पढ़ते ही नहीं। कई लोग तो खाली सुनते हैं बस, कई लोग सुनते भी नहीं है। कार चलाते चलाते सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, सेंटर पर तो आते ही नहीं है, घर पे ही बैठ के सुनते हैं। सब अवेलेबल है वहां पर, सेंटर पर मुरली अवेलेबल है, पर ये संगठन अवेलेबल नहीं है। यज्ञ की ये दीवारें जो है, शक्ति है इन दीवारों में, ये दीवारें नहीं है वहां, ये किला है, ये किला नहीं है वहां, ये बहने नहीं है वहां। इसके लिए यहां आना है। कम से कम जितना समय मुरली सुन रहे, विकर्म तो नहीं हो रहे? संसार में तो पाप ही पाप और विकर्म ही विकर्म है। मुरली चिंतन। अगली मर्यादा है नो, एन फॉर नो। नो अर्थात क्या क्या नहीं करना है उसकी अपनी लिस्ट बनानी है। मुझे क्या क्या नहीं करना है, नो की लिस्ट बनानी है। नो फिल्म, नो सिनेमा, नियम बनाना है। मुझे ये करना ही नहीं है, बस स्टॉप। मना मतलब मना, क्योंकि ये जब भी किया तब तक पश्चाताप हुआ। एक नो की लिस्ट बनानी है। नो मतलब नहीं, मुझे क्या क्या नहीं करना है। क्या क्या करना है वो तो पता है, क्या क्या नहीं करना है उसकी लिस्ट बनानी है। टीवी सीरियल कितने कितनी माताएं देखती है, जरा ईमानदारी से हाथ खड़े कर। टीवी सीरियल्स हो ही नहीं सकता, कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर शर्म के मारे। ये बाजू वाले हमको क्या सोचेंगे, हम तो बहुत मान योगी है, हमारी कॉलर टाइट है, नीचे नहीं हो जाए। टाइम वेस्ट, वो सारा टाइम जो टीवी देखने में जा रहा है अगर मुरली पढ़ने में लगा दो तो जीवन सफल हो जाएगा। उसके बाद में श्रीमत का पालन करना, ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत, ये मर्यादा है। श्रीमत क्या है वो मिलेगी मुरलियों से, ढूंढना है। आज की मुरली में क्या श्रीमत है ढूंढना है। उसके बाद में भाइयों के लिए अगला नियम है प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर। कई सेंटरों पर कुछ कुछ भाई अपने ही इच्छा से, अपनी मर्जी से जबरदस्ती अपने ही किताबें पब्लिश करते हैं, प्रिंट करते हैं पाम्पलेट फोल्डर्स बहनों को बताए बिना। इसके लिए मर्यादाओं में एक नियम है कि जब भी कोई लिटरेचर प्रिंट किया जाए परमिशन लेकर ही किया जाए। उसके बाद में अगला नियम है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंश्योरेंस, अर्थात जो भी काम करो अच्छे से करना है। काम चलाने के लिए, काम निकालने के लिए नहीं। सेंटर पर बुलाया गया, ये साफ करो, फटाफट कर दिया और चलो घर। जैसे ये हमारा घर नहीं, हमारा घर उधर है, इसको भी अपना घर समझना है, दिल से करना है। अगर किसी के बेटी की शादी हो तो कैसे दिल से करते हैं सब, या करते ये मेरा काम नहीं है, ऐसा करते नहीं ना, अगर बेटा बीमार हो जाए तो कोई माँ ऐसी करती है, 5 बज गए मेरी ड्यूटी पूरी होगी मैं तो जा रही हूं, ऐसी कहती है? क्यों? उसका अपना बेटा है, ये घर भी मेरा है, ये परिवार भी मेरा है, ये यज्ञ भी मेरा है, अपनत्व का भाव लाना है यहां पर, तो वहां का मोह कम होगा थोड़ा। क्यों? उसके बाद है संबंध की मर्यादा। एक ब्राह्मण आत्मा का दूसरे ब्राह्मण आत्मा से कैसा संबंध होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? भाई भाई, ये बहुत ऊंची बात बोल दी, थोड़ा नीचे का बोलो। और कैसा होना चाहिए? प्यार भरा। कैसा होना चाहिए? मधुर। कैसा होना चाहिए? एक दूसरे को मदद करनी है। कैसा होना चाहिए? हाँ, अच्छी भावना होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा ये नहीं करना है हमको। थोड़े समय के लिए आए हैं यहां पर, उसमें भी झगड़े करके जाएंगे तो क्या कहेंगे? रिलेशनशिप्स में डिटैचमेंट चाहिए, न्यारापन और लविंग, न्यारा और प्यारा, इस तरह के संबंध। उसके बाद है अगली मर्यादा, मौन और एकांत, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। सारी दिनचर्या में कुछ टाइम मौन के लिए निकालना है और कुछ टाइम एकांत का लिए निकालना है, ये मर्यादा है। उसके बाद है ट्रस्टी, ट्रस्टी बन के रहना है। बैंक का मैनेजर, कितने पैसे आते हैं उसके पास? खुश होता है क्या वो अगर कोई पैसे डिपॉजिट करने आ जाए तो? ना। अगर कोई विड्रॉ करने आ जाए दुखी होता है? नहीं। ना तो पैसे आने से खुश होता है, ना जाने से दुखी होता है। उसको पता है मेरी सैलरी मिलने वाली है 1 महीने के बाद। ट्रस्टी है वो। इस गृहस्थ व्यवहार में कैसे रहो? ट्रस्टी, ट्रस्टी के रूप में रहो। उसके बाद में यूजिंग ज्ञान इन प्रैक्टिकल वे, जो भी ज्ञान प्राप्त है उसको यूज करना है प्रैक्टिकल में, सारे दिन भर। सुबह मुरली में सुन लिया एक पॉइंट, अब उसको यूज करो, ये मर्यादा है। उसके बाद है सेंटर के स्टूडेंट, एक सेंटर से जब दूसरे सेंटर पे जाते हैं विजिटिंग अदर सेंटर, तो क्या होना चाहिए? परमिशन लेकर जाए, लेटर लेकर जाए। ऐसा नहीं, मैं तो बहुत जानता हूँ, मेरी बहुत पहचान है। मधुबन में कई लोग ऐसे ही पहुंच जाते हैं डायरेक्ट पहचान के द्वारा, अनुभव भी नहीं होता है। उसके बाद में अगला नियम है वॉश आफ्टर मोशन, ये तो सब करते ही है। जब भी पेट साफ करें, पेट साफ करने के लिए जाते हैं तो स्नान करना, ये नियम है। उसके बाद है एक्सरे, एक्सरे अर्थात स्वयं की चेकिंग दिन में 2 बार होनी चाहिए। एक्सरे स्वयं का 2 बार करना है, सुबह अमृत वेला और रात को सोने से पहले। उसके बाद है योगा ट्वाइस अ डे, योग दिन में 2 बार होना चाहिए, रोज का नियम, सुबह 1 बार शाम को 1 बार। और लास्ट है जेड, जील एंड एंथुसियाज्म अर्थात उमंग, उत्साह से हर कार्य करना है। तो ऐसे ये टोटल 26 मर्यादाएं हैं। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ए फॉर अमृत वेला, बी फॉर ब्रह्मचर्य, सी फॉर सेंटर एटमॉस्फियर अर्थात सेंटर का वायुमंडल, डी फॉर ड्रेस, ड्रेस कैसा हो? सिंपल हो, सादा हो, भड़कीला ना हो, ढका हुआ हो, पारदर्शी ना हो, पुरुषों जैसा, बहनों के लिए पुरुषों जैसा ना हो, ये नियम। उसके बाद में ई फॉर इकोनॉमी, जो भी करो वो बाबा कहते हैं कम खर्च बाला नशीन, ऐसा देखना है कम से कम जिसमें खर्चा हो, कम से कम शक्ति लगे, कम से कम चीजें उसमें लगे और सेवाएं ज्यादा हो, ऐसा लक्ष्य रखना है। और कुछ भी चीजें वेस्ट नहीं करनी है, भोजन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो या फिर पेट्रोल हो, कुछ भी। उसके बाद फूड, एफ फॉर फूड, फूड का ध्यान रखना है, जो 4 बातें बताई और रोज भोग लगाने की बातें। उसके बाद जी, जी मतलब देना, गिव, क्या क्या देना है आपस में? शुभ भावना, शुभकामना, खुशी और दुआएं, सबको दुआएं देते रहना, थोड़ी भी कोई सेवा करे उसको दुआएं दे देना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा किया, दुआएं दे देना। उसके बाद एच, होली कंपनी अर्थात सत्संग। सत्संग के सारे प्रकार बताए अलग अलग, उन सब का पालन करना है। उसके बाद में आय, आय अर्थात इनकल्केशन ऑफ वर्च्यू, मतलब दिव्य गुणों को धारण करना, दिव्य गुणों की भट्टी करना। जे अर्थात जर्नी टू मधुबन, मधुबन में जाने के बाद क्या क्या करना है, लक्ष्य रखना है, मुझे तपस्या करने जाना है, 4 दिन 5 दिन तपस्या करके वापस आना है, बस वहां क्या करना है, किस किस को ठीक करना है, ये सब चीजों में नहीं जाना है। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी नहीं करनी है। हम गए किस लिए थे, 4 दिन के लिए गए थे, 4 दिन के बाद आ गए, वहां कौन क्या करता है, किसने क्या किया, कौन का कौन डिपार्टमेंट में कौन चेंज हो गया, क्या हो रहा है, हमको क्या करना है, हम किस लिए जा रहे हैं, तपस्या, तपस्या की और वापस आ गए, बस। उसके बाद में कीपिंग चार्ट, चार्ट लिखना या बताना बाबा को। उसके बाद में लव फॉर वन बाबा, एल एक बाप से प्यार। उसके बाद में एम, एम अर्थात मुरली चिंतन, रोज की मुरली से टॉपिक्स निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं, उसका चिंतन करना है, एक ग्रुप बनाना है। व्हाट्सएप कितने लोग यूज करते हैं, लगभग सभी, कुछ माताएं छोड़कर। एक ग्रुप बनाना है जिसमें अपने दोस्त को ऐड करना, ग्रुप बना दिया फिर उसको हटा देना, फिर ग्रुप बन गया, किसी को ऐड करना और उसको हटा देना, तो ग्रुप में कौन रहेगा, केवल मैं और कोई नहीं। वो जो ग्रुप बना है उसमें रोज की मुरली के पॉइंट्स नोट करना है, कॉपी पेस्ट, जो मेन मेन पॉइंट है, जैसे आज की मुरली या तो लिखना है, टाइप करना है उस पर, या तो ऑलरेडी अवेलेबल रहती है, खाली यहां से उठा के वहां डालना है, सारी मुरली के मेन मेन पॉइंट उसमें डाल के रखो, बीच बीच में दिनचर्या में रिवाइज करो, पावरफुल पॉइंट्स जो आती है वो उसमें लिख के रखना है अलग से। या तो जो लोग ये सब नहीं करते, आपके पास छोटी डायरी यूज करनी है, उसमें पॉइंट्स लिखने, ताकि दिन भर में रिवाइज हो सके। लोग बड़ी डायरी यूज करते वो भी ठीक है, पर वो बंदी रहती है, कुछ कुछ माता है सेंटर पर ही, ये टेबल के नीचे ही छोड़ के जाती है अपनी डायरी जिसमें मुरली लिखती है, सीधा आप दूसरे दिन खुलेंगे, तब तक बाय, फिर मिलेंगे, ऐसे। उसके बाद में एन, एन फॉर नो की लिस्ट बनानी है, मुझे क्या क्या करना नहीं है, बाबा ने जिसके लिए एकदम मना किया और फिर भी मैं कर रहा हूं। ओ ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमद, श्रीमद का पालन करना। उसके बाद में पी, पी अर्थात प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर, अपने मन से लिटरेचर प्रिंट नहीं करना है। उसके बाद में क्यू, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस, मतलब जो भी काम करो वो दिल से करो, क्वालिटी वाला हो, फटाफट फटाफट नहीं, काम चलाओ नहीं। जैसे वो माता, वो हमारा एक 7 डे कोर्स का चित्र देखा है सबने, जिसमें पहले ज्ञान में नहीं है, लड़ाई कर रहे हैं, और फिर ज्ञान में आ गए, शांति से भोजन कर रहे हैं, तो वो माता फटाफट में कैसे समझा रही है, देखो ज्ञान में नहीं थे तो रोटी बना रहे, उसमें रोटी बनाते हुए दिखा, ज्ञान में आ गए पूरी तल रहे, आगे चलो। वो चित्र देखा है सबने, जिसमें ज्ञान वाला चित्र है, अज्ञान वाला चित्र है, ज्ञान वाला जो है उसमें पूरी तलते हुए है, अज्ञान वाला है उसमें रोटी बनाते हुए, तो वो माता कैसे समझा दी, ए देखो पहले ज्ञान में नहीं थे, बीके नहीं थे तो रोटी, ज्ञान में आ गए पूरी, चलो आगे नेक्स्ट, ऐसे समझा रही है, फटाफट, टाइम नहीं है। जो भी काम करो वो दिल से। क्यू, क्यू के बाद में आर अर्थात रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध कैसे है। यदि भगवान के सामने मेरे ये रिलेशन को रखा जाए, ये मेरा पति है, ये मैं हूं, ये मेरा बच्चा है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरी बहन है, ये मैं हूं, ये मेरा फ्रेंड है, ये मैं हूं ब्रह्मा कुमार और ये है ब्रह्मा कुमारी, इस संबंध को हमने बाबा के सामने रखा, क्या बाबा इस संबंध को स्वीकार करेगा? अगर उसमें विकार की गंध है तो रिजेक्ट कर देगा ऐसे संबंध को। अपने संबंध को भगवान के सामने रखो, देखो वो तस्लीम करता है या नहीं, वो स्वीकार करता है कि नहीं। अगर गंध है उसमें तो उसको दुर्गंध आएगी हमसे। उसके बाद में आर एस, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, मौन और एकांत। उसके बाद में टी अर्थात ट्रस्टी, यू अर्थात यूजिंग ज्ञान इन प्रैक्टिकल लाइफ, जो ज्ञान मिला है उसको दिनचर्या में यूज करना है, खाली लिख के रखना नहीं है मुरली डायरी में, उसके बाद में वी विजिटिंग अदर सेंटर, लेटर लेकर जाना है, बाकायदा जाना है, परमिशन के साथ जाना है तो सबसे अच्छा है। उसके बाद में डब्ल्यू वॉश आफ्टर मोशन, एक्स एक्सरे करना, एक्सरे करना मतलब आत्मनिरीक्षण, सेल्फ चेकिंग करना है दो बार। एक्स वाई, वाई अर्थात योगा ट्वाइस अ डे, रोज का नियम बनाना है। सुबह तो अमृत वेला बहुत अच्छा करते पर नुमा शाम का योग भी अच्छा हो। लास्ट है जेड, जेड अर्थात इंग्लिश में शब्द है जील, जील अर्थात उमंग उत्साह। जो भी करो उमंग उत्साह से करो, मर मर के नहीं करना है, दुखी हो के नहीं करना है। तो सबको याद हो गए कितने नियम है, कितनी मर्यादा है, 26 मर्यादा ए से लेकर दो जेड तक। अपनी डायरी में लिख के रखना है ये ABCD और रोज एक बार रिवाइज करना है। जब याद हो जाए तो मन ही मन रिवाइज करना है और फिर चेकिंग भी करना है मैं फॉलो करता हूं कि नहीं। ठीक है, ओम शांति।